ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अधिवेशन में भाग लेने के लिए नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए स्विट्जरलैंड के जिनेवा के लिए रवाना। प्रतिनिधि सभा में विनियोजन विधेयक पर विचार विमर्श शुरू। वैदेशिक रोजगार का लालच दिखाकर 15 करोड़ रूपये की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और यमन में प्रवासियों को ले जा रही एक नाव डूबने से कम 41 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 112वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए आज शाम स्विट्जरलैंड के जिनेवा के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति पौडेल का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के अति विशिष्ट कक्ष में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल, नेपाल सरकार के उप प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, सुरक्षा निकायों के प्रमुखों तथा नेपाल सरकार के उच्च अधिकारियों ने विदाई किया था। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति पौडेल मुख्य वक्ता के रूप में ग्लोबल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस के उद्घाटन मंच को संबोधित करेंगे, जो इसी जेठ 31 गति को उच्च स्तरीय सत्र में आयोजित किया जाएगा। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पौडेल जेठ 30 गति स्विस महासंघ के राष्ट्रपति वियोला अर्माल्ड के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पौडेल आषाढ़ 1 गति को जिनेवा से संघीय गणतंत्र जर्मनी के बर्लिन के लिए प्रस्थान करेंगे। जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर के निमंत्रण पर राष्ट्रपति पौडेल जर्मनी की औपचारिक यात्रा पर गए हैं। राष्ट्रपति पौडेल की आषाढ़ 3 गति जर्मनी के राष्ट्रपति के साथ औपचारिक बैठक होगी। राष्ट्रपति पौडेल अपनी यात्रा पूरी कर आषाढ़ 5 गति को स्वदेश लौटेंगे। इसी बीच राष्ट्रपति पौडेल की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव को सौंपी गई है। प्रतिनिधि सभा में आज से विनियोजन विधेयक पर विचार विमर्श शुरू हुआ है। विनियोजन विधेयक पर विचार विमर्श के दौरान आज शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय और कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय से संबंधित विविध विषयों में सांसदों ने अपनी धारणाएं रखी। इस दौरान सांसदों ने वैदेशिक रोजगार में जाने वाले युवाओं की बढ़ता संख्या का जिक्र करते हुए उन्हें स्वदेश में ही रोक सकने वाली विशेष योजनाएं लाने, कृषि में वास्तविक किसानों को अनुदान मुहैया कराने की व्यवस्था करने जैसे मुद्दों को उठाया है। सांसदों ने 16वीं पंचवर्षीय योजना और प्राथमिकता के साथ नीति तथा कार्यक्रम और बजट के बीच तादाम्य का अभाव बताया है। विद्यालय शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के हिसाब से बजट विनियोजन को जरूरी बताते हुए विद्यालय शिक्षा को आवासीय विद्यालय की अवधारणा में लाने की आवश्यकता के जिक्र के साथ सांसदों ने बजट में इन चीजों के अभाव को और संकेत किया है। इसके अलावा प्रासंगिक मल उत्पादन की योजना का बजट में अभाव का जिक्र करते हुए कृषि बसमा और अनुदान को प्रतिफल देने वाला न बनाए होने लगा मुद्दे सांसदों ने उठाए। बैठक में सांसद प्रेम सुवाल, अमरेश कुमार सिंह, पुष्प बहादुर शाह, बद्री पांडे, रमा कोयराला पौड्याल और संजय कुमार गौतम ने खर्च की कटौती का प्रस्ताव रखा था। साथ ही विभिन्न भ्रष्टाचारों की छानबीन, तराई में पेयजल का अभाव समेत कई समसामयिक मुद्दों को भी सांसदों ने उठाया था। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने सुरक्षित कारोबार प्रथम संशोधन विधेयक 2080 पारित किया है। अर्थमंत्री वर्षमान पून द्वारा प्रस्तुत विधान व्यवस्थापन समिति के प्रतिवेदन सहित सुरक्षित कारोबार प्रथम संशोधन विधेयक 2080 सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन और राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आषाढ़ 4 गते मंगलवार दोपहर 1:15 पर बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिन्दी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय गिरावट, सामाजिक असमानता और आर्थिक अस्थिरता पर चिंता व्यक्त की है। आज ललितपुर में मेड वेस्ट और नेपाल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा दीर्घकालीन विकास अनुसंधान पर आयोजित 30वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति यादव ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक समाधान की आवश्यकता है, क्योंकि अकेले एक देश के प्रयास से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम नहीं कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति यादव ने कहा कि पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का महत्व, नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका, संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता और स्थिरता को संबोधित करने के लिए नवीनतम तकनीक को आत्मसात करके आगे बढ़ना आवश्यक है। इसी जेठ 32 गति तक चलने वाले इस सम्मेलन में 50 देशों के 300 से अधिक प्रोफेसरों, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और नीति निर्माता शामिल है। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के जनकपुर धाम में एकता प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन के समापन सत्र में पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक रिपोर्ट सुझावों के साथ पारित कर दी गई है। अध्यक्ष यादव द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन में देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, विश्व पर्यावरण और जसपा पार्टी में फूट समेत 31 पेज लंबी राजनीतिक प्रतिवेदन में उल्लिखित विषय पर महाधिवेशन प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को पारित किया गया। कल तक चलने वाले महाधिवेशन के बंद सत्र में अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने और व्यापक बहस के बाद उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। महाधिवेशन कल नए नेतृत्व का चयन करके पूरा किया जाना तय है। महाधिवेशन में नेपाल के 77 जिलों से करीब 1300 प्रतिनिधि शामिल हैं। कंबोडिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस लगात देश भेजने का लालच देकर 300 से अधिक लोगों से 15 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने चितवन के भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 18 के 28 वर्षीय राजकुमार भट्ट कास्की की, माछापुछे गांव पालिका वार्ड नंबर 8 के 22 वर्षीय नवीन बीका और कास्की पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंबर 8 के 23 वर्षीय पवन पंत को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप आदि पर फर्जी आईडी का उपयोग कर संपर्क में आने वाले लोगों को विदेश में काम करने के लिए भेजने के लिए आकर्षक वेतन और भत्ते का विज्ञापन देकर ठगी किया करते थे। धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत मिलने के बाद काठमांडू घाटी अपराध जांच कार्यालय ने उन्हें गिरफ्तार किया। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने सरलाही की बागमती नगरपालिका के प्रमुख भरत कुमार थापा, उप प्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेल सहित 6 लोगों के विरुद्ध विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। उन पर 30,29,34,000 रूपये से अधिक भ्रष्टाचार करने का आरोप है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता नरहरि घिमिरे ने दी। आयोग ने उन सभी से उतनी ही क्लेम्ड अमाउंट भरवाने के मांग दावी सहित मुकदमा दर्ज किया है। इसी तरह आयोग ने जिला समन्वय समिति सरलाही के तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी विरुद्ध कैद और जुर्माना भरवाने का मांग दावा किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्वी यमन के तट से दूर अरब सागर में प्रवासियों से खचाखच भरी एक नाव के पलट जाने से 41 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई है। एक सरकारी अधिकारी ने चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ को यह जानकारी दी। सब्बा प्रांत में यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक अली अल धीव ने बताया कि 200 से अधिक अफ्रीकी प्रवासियों को ले जा रही एक नाव सवाब के तट से दूर पलट गई। उन्होंने कहा कि सवाब के स्वास्थ्य कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की खोज और बचाव टीमें दक्षिण पूर्वी सवाब में राधूम जिले के तो से शवों को बरामद करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि 41 शव बरामद किए गए हैं, वहीं 70 से अधिक जीवित बचे लोग जिले के तट तक पहुंचने में कामयाब रहे और उन्हें मौके पर टीमों द्वारा तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई। बांग्लादेश में रोहिंग्या चरमपंथियों के कैंप में हुई हिंसा में 3 रोहिंग्या शरणार्थी मारे गए हैं और 7 घायल हुए हैं। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक कैंप में 2 प्रतिद्वंदी समूहों के बीच हिंसा हुई। अधिकारियों के मुताबिक क्लॉक्स बाजार जिले के उखिया कैंप में गश्त लगा रहे शरणार्थियों पर अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी के सदस्यों ने हमला किया। क्लॉक्स बाजार म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अधिवेशन में भाग लेने के लिए नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए स्विट्जरलैंड के जिनेवा के लिए रवाना। प्रतिनिधि सभा में विनियोजन विधेयक पर विचार विमर्श शुरू। वैदेशिक रोजगार का लालच दिखाकर 15 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और यमन में प्रवासियों को ले जा रही एक नाव डूबने से कम 41 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।